आसिफ की कहानी, जो लियाकतपुर से इनके बहुत ही अच्छे भाई हैं, अल्लाह मियाँ ऐसे भाई सबको दे, जुलकरनैन का नाम है, जुलकरनैन हमें सुना रहे हैं। तो सामीन कहानी सुनते हैं, फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे।
मेरा नाम जुलकरनैन है, हम लियाकतपुर जिला रेनियार खान में रहते हैं। मेरी कहानी इस तरह से है कि मेरे भाई का नाम मोहम्मद आतिफ अहमद और इसकी उम्र 8 साल है, ये क्लास 2 में पढ़ता है। इसको एक बीमारी जिसका नाम कंजेनल एडर्नल हाइपरप्लीजिया, उसमें पैदाइशी तौर पर मुबतला है। ये हार्मोन की बीमारी है जिसकी वजह से जिस्म में नमकियात पैदा नहीं होता और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और इनकी नशोनुमा नहीं होती, और अगर इलाज ना किया जाए तो इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। इससे पहले इस बड़ी सिस्टर जो है वो 3 माह की उम्र में इस दवाई ना मिलने की वजह से फौत हो चुकी है। इसके लिए जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है वो हाइड्रोकार्टिसोन और फ्लोरीन नेप है, जो कि पाकिस्तान में बदकिस्मती दस्तियाब ना है, और ये हम ब्लैक मार्केट में खरीदते हैं जिसके लिए हमें 6 से 7 हज़ार रुपये माहाना खर्चा आता है, जो कि मेरी फैमिली की कुव्वत खरीद से बाहर है। इस सिलसिले में हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें मुस्तकिल तौर पर और कम कीमत में इन मेडिसिन की फरहमी में हमारी मदद की जाए ताकि बच्चे की जिंदगी को बचाया जा सके।
अच्छा जुलकरनैन, अब आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए।
मैं यहाँ लियाकतपुर में जॉब करता हूँ प्राइवेट तौर पे। मैं इधर कोर्ट क्लर्क हूँ लायर के साथ एज ए असिस्टेंट। मैं इसमें कोई कंफर्म नहीं होता, डेली बेसिस पे होता है, कभी 200 कभी 300 कभी कुछ भी नहीं होता। जिस दिन हड़ताल वगैरह हो, स्ट्राइक हो, उस दिन कुछ भी नहीं होता। मेरी उम्र 30 साल, मैं तकरीबन 7 साल से काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अब्बू की डेथ हो गई थी और घर में कोई और नहीं था घर को चलाने वाला, इसलिए मुझे काम करना पड़ा। घर में मेरे साथ मेरे 3 भाई हैं और एक वालदा है। मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ था 2007 में, हार्ट पेशेंट थे, उस वजह से उनकी डेथ है। उस वक्त मैं स्टडी कर रहा था, बीए की, पढ़ने में एवरेज था। वैसे तो लायर ही बनना चाहता था लेकिन वो तलीम मुझे ड्रॉप करनी पड़ी, एजुकेशन अपनी छोड़नी पड़ी। काफी मुश्किल था, दो दो साल तो बहुत मुश्किल से गुजारे जो पहले 2 साल थे। उसमें कुछ रिलेटिव ने हेल्प की और कुछ दोस्तों ने, अब्बू के दोस्तों ने, कुछ मेरे दोस्तों ने, फिर इस तरह करके अब कुछ बेहतर हो गए हैं। मोहम्मद आतिफ, इस सिलसिले में हमारे जो इनके डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर अब्दुलरहमान असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की इसकी बीमारी के सिलसिले में, क्योंकि इससे पहले इसकी सिस्टर थी, इससे बड़ी थी वो आयशा, उसको भी यही बीमारी थी, वो 3 माह की होकर फौत हो गई। डॉक्टर साहब ने इसके लिए जितनी भी मेडिसिन वगैरह या जो होती थी टेस्ट, वो उन्होंने खुद करवाए, इसके लिए उन्होंने हमसे कोई पेमेंट नहीं लिया, बल्कि अब भी वो इसका इलाज फ्री कर, इसकी चेकअप वगैरह वो फ्री करते हैं, किसी किस्म के इसके चार्जेस वगैरह वो नहीं लेते। ये डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर, उन्होंने ये डायग्नोज की थी बीमारी और उन्होंने ही पहले बच्ची का भी इलाज किया, लेकिन वो मेडिसिन ना मिलने की वजह से बर वक्त वो बच्ची फौत हो। आतिफ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी लायक है, क्लास 1 का इसका रिजल्ट आया जिसमें इसकी तीसरी पोजीशन आई, थर्ड आया। ये जब इसकी मेडिसिन वगैरह इसको मिलती रहती है तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, जब मेडिसिन नहीं मिलती या कम हो जाती है तो फिर ये बेड पे चला जाता है, फिर नॉर्मल नहीं रहता, फिर उल्टी वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती है, जिसमें दर्द, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बीमारी की वजह से कुछ इसको साइकी का है प्रॉब्लम, शर्मिला हो गया है, लोगों से ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, बस अपने उसमें रहता है, अपनी दुनिया में मगन रहता है, कोई गेस्ट आ जाए उससे ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अपनी पढ़ाई वगैरह एजुकेशन में ठीक है, अपनी बुक्स वगैरह का ख्याल रखता है। अम्मी हाउस वाइफ है, वो घर ही होती है, बहुत उनको डिप्रेशन, इसकी वजह से काफी डिप्रेशन होता है। अभी ये परसों इसकी मेडिसिन खत्म हुई थी, उस वजह से बुखार हो गया, तो अभी वो मेडिसिन फिर डोज डबल करके दी, अब ठीक हो गया। डॉक्टर साहब की तरफ से सख्ती से हिदायत है कि इसको बुखार नहीं, टेम्परेचर नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। ये बीमारी असल में तो कजन मैरिज की वजह से होती है, मारूसी होती है। अभी भी मेरा दिल चाहता है कि अगर मुझे कुछ मौका मिले तो मैं इंशाल्लाह ताला ये पढ़ूंगा आगे और अपनी स्टडी मुकम्मल करके इसी तरह का कोई एनजीओ वगैरह या कोई इस तरह का काम इन बच्चों के लिए खास तौर पे करना चाहता हूँ जो इस बीमारी में मुबतला। बीमारी का ये है कि टेस्ट, इसका जो मेन चीज होती है इसका टेस्ट है, जो कि बहुत महंगा कॉस्टली है, जो कि आम लोग नहीं कर सकते। टेस्ट ना होने की वजह से काफी बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं, सरकारी तौर पर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी सहूलत मौजूद नहीं है, सिर्फ आगा खान में ये टेस्ट की सहूलत पाकिस्तान में मौजूद है। उसके लिए इधर इन्होंने कलेक्शन सेंटर बनाए हुए हैं मुख्तलिफ सिटीज में। आतिफ का टेस्ट हमने साथ इधर से 50 किलोमीटर दूर है खानपुर सिटी, उधर जाके सैंपल दे के आए थे इसके ब्लड का। ये डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने किया था, ये उस वक्त जब आज से 7-8 साल पहले उस वक्त भी ये 2000 रुपए का हुआ था। आतिफ को ये बात कर।
हेलो
जी, अस्सलाम वालेकुम आतिफ, कैसे हैं आप?
ठीक।
तो सुना है आपकी तबीयत खराब हो गई थी, क्या हुआ था?
गोली नहीं थी।
गोली नहीं थी?
टावर पे डाले।
अच्छा आतिफ, मुझे ये बताओ कि तुम क्या क्या पढ़ते हो स्कूल में?
स्कूल में इंग्लिश पढ़ता हूँ, उर्दू, साइंस, सामियाद और मैथ।
इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं?
हाँ जी, जी के का मछलियाँ, क्लॉक, घर बनाने।
और आपका कोई दोस्त कौन कौन है वहाँ पर?
वहाँ पर एक अबू बकर, शारिर, एक अहमद सिस्तार।
आपके सबसे ज्यादा दोस्ती किससे?
अबू बकर से। अच्छा है, अच्छा काम करता है, गाले नहीं निकालता।
तो सामिन, ये थी कहानी हमारे छोटे से बच्चे आतिफ की। और डॉक्टर साहब, एक अजीब बात होती है, ये बच्चे जो होते हैं जब बीमार भी होते हैं तो इनकी बातें कुछ ऐसी होती हैं कि आपको खुद को मुस्कुराने लगते हैं आप इनकी बातें सुन के ना, क्योंकि उनको शायद अपनी बीमारी का कुछ इतना एहसास भी नहीं होता। अगर उन्हें खुश रखा जाए तो वो समझते नहीं कि उनकी ज़िंदगी में कितना एक संगीन मसला है। आप तो खैर हर दिन ज़ाहिर है इन चीज़ों से निमटते होंगे।
यही तो मासूमियत है जी।
जी,
इसी का नाम तो मासूमियत है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बताइए, क्या पता, ये ज़ुल्करनैन भी हमारे साथ है, लेकिन अब आप हमारे सुनने वालों को बताइए ये बीमारी क्या है जो आतिफ को है।
ये तो बेसिकली जैसा महल तो उसके भाई ने सबको डिटेल बता दी है कि ये इंटर मैरिजेस की वजह से होती है, कन्वेंटल मतलब पैदाइशी तौर पर ये नॉर्मेलिटी होती है।
अच्छा।
इस बच्चे में एक खास चीज है जिसे हम जो लाइफ थ्रेटनिंग है स्टीरॉयड जिसे आप आम जुबान में कहते हैं, वो इसके अंदर नहीं बन रहे जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है।
अच्छा।
और इसकी वजह से हमारी बॉडी ब्लड प्रेशर हर चीज में गेट होती है। मतलब स्टीरॉयड वो चीज होते हैं जो कि हम हर बॉडी को सहारा देने के लिए वो देते हैं। तो
डॉक्टर साहब की आवाज बहुत कम आ रही है जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब,
ये जो चीज है ये बच्चों के स्टीरॉयड की बहुत इम्पोर्टेंस होती है इंसान में, हर इंसान में। और क्योंकि इस बच्चे में पैदाइशी तौर पर ये नहीं बन रहा है, इनकी इसे आर्टिफिशियली हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये जो दवाएं हैं ये बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। और जैसा कि उन्होंने बताया, पैसा इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट इशू इज की अवेलेबिलिटी। जो चीज स्मगल हो रही होती है तो कई दफा ऐसा होता है कि वो बाद में नहीं मिलती। आप ये समझें कि आज मिल गई है, 6 महीने में मिल रही है, सडनली वो ड्रॉप हो गई, नहीं मिल रही, मार्केट में नहीं आ रही, तो फिर कहाँ जाएंगे
जी?
तो ये इशू होता है इसमें।
अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो हमेशा बहुत ही पॉजिटिव बातें करते हैं। आपसे मैंने कितने लोगों के लिए कहा और आपने उनका काम कर दिया। आतिफ के लिए मैंने बड़े दिल से कोशिश की, और पहले एक डॉक्टर साहब थे इफ्तिखार साहब।
मैं बड़ा पुरउम्मीद हूँ
जी,
मैं बड़ा पुरउम्मीद हूँ। मुझे आप 10 दिन का टाइम दे देना, उम्मीद है कि लियाकतपुर में इसके लिए अरेंज कर दूंगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी शिकायत करना चाहती हूँ आपसे, मैं आपसे शिकायत करना चाहती हूँ कि सरकारी बैतुल माल में हमें एक डॉक्टर साहब आए थे, वो भी आपकी तरह बहुत हमारी मदद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो बैतुल माल है उसमें इसकी गुंजाइश मौजूद है, एक बाकायदा फंड होता है जो दवाओं का होता है, और गरीब फैमिलीज को गालबन 1 लाख रुपए तक की दवा मिल सकती है महाना। उनके वो आए
1 लाख से ज्यादा की मिलती है।
जी हाँ,
1 लाख से दवा ज्यादा की भी मिल जाती है। बट इशू इज कि देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेशंस गवर्नमेंट सेक्टर में इन चीजों पे जाने के लिए। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं हो सकते गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ ना, प्राइवेट सेक्टर से आपको अरेंज कर।
अच्छा, तो नहीं, मैं तो आपको इसलिए बता रही हूँ कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी है ज़ुल्करनैन के सामने।
नहीं, ये आप शर्मिंदा ना हो, ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स होती है बहुत सी चीजें। मैं आप कैंसर सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 8 साल से।
अच्छा।
और इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है कि आपको बगैर इंसान को कोशिश जारी रखनी चाहिए। और मेरा व्यू ये है कि इंसान हमेशा کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور سب کچھ کور ہو جائے گا.
اچھا یہ ذوالقرنین ہمارے ساتھ ہیں, ان کے بھائی ذوالقرنین, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
ہلو
جی ذوالقرنین, جیسے کہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا ڈاکٹر صاحب سے جو میں بات کہہ رہی تھی, میں رسمن یا تکلفن نہیں کہہ رہی تھی, مجھے واقعی بہت افسوس ہوتا ہے آپ مجھے بار بار خط لکھ رہے تھے, لیکن میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کا وہ خط لکھنا بہت اچھا تھا کہ آپ مجھے ای میلز کر کے جو یاد دلا رہے تھے, اس سے یہ ہوا کہ میرے ذہن میں بات رہی اور میں کوشش کرتی رہی. میں اپنے تمام سننے والوں سے کہوں گی کہ کام کرنے میں دیر اس لیے لگتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں بھی تو پاکستان میں اسی سسٹم سے کام کروانے کی کوشش کرتی ہوں جس نے ایک طرح سے کبھی کبھار آپ کو مایوس یا ناکام کیا ہوتا ہے, تو کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو ملوایا تھا, آپ نے کوشش بھی کی ہوگی, اس کے بعد بیت المال میں کیا ہوا, کیا پھر اس کا کیا ہوا, آپ گئے تھے وہاں؟
میڈم بڑی بدقسمتی سے آج ہی میری بات ہوئی تھی ان سے, تو ایک سال سے نا ہمارے جو ڈسٹرکٹ رینجر ہیں ان میں بیت المال کی جو چیئرمین تھا گورنمنٹ وہی نامزد نہیں کیا پچھلے ایک سال سے, لوگوں ایک روپئے کی جو ان سے لگنی وہ کہتے جب تک یہ چیئرمین بنے گا اس کا وہ گورنمنٹ نامزد کرتی, اس نے بھی تک کیا نہیں, لہٰذا ہم یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں, کہتے پیسے پڑے ہیں ہمارے پاس لیکن ہم دے نہیں سکتے کسی کو, وہ آدمی اپوائنٹ نہیں کیا گورنمنٹ نے ابھی تک ایک سال سے.
لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اعجاز مسعود صاحب, بس اب آپ سمجھیے آپ کا کام ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ان سے آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کریں گے, میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں؟ ڈاکٹر صاحب
جی, ہلو
جی, ان کا نمبر میں آپ کو دے دوں ذوالقرنین کا؟ تو ٹھیک ہے میں آپ کو ان کا نمبر ای میل کر دوں گی. اچھا ذوالقرنین میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. عاطف اب تو ایک سال, عجیب بات یہ ہے ہم نے یہ پروگرام کیا تھا گزشتہ سال 9 اپریل کو اگر مجھے صحیح تاریخ یاد ہے, پورے ایک سال بعد تقریباً ہم دوبارہ کر رہے ہیں ناکام ہونے کے بعد ہر جگہ سے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے عاطف میاں ایک سال اور بڑے ہو گئے اس دوران, تیسری پہلی کلاس میں پڑھتے تھے اب سیکنڈ میں آ گئے ہوں گے. ذوالقرنین کیسا پڑھ رہے ہیں عاطف اب بھی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ جانا چاہ رہے ہیں؟
نہیں نہیں آپ بتائیں. اچھا میں چونکہ میرے پاس آج میں ہمارے یہاں نا میڈیسن دی جاتی ہے بلڈ کینسر کے پیشنٹ کو فری, تو وہ میرے پاس کیمپ لگا ہوا تھا میں اس میں ذرا بزی تھا, پر میں آپ کو اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ اس بچے کا آپ مجھے نمبر سینڈ کر دیں, آئی ٹرائی مائی بیسٹ میں اسے رہیں یا خان سے, یا کیونکہ دیکھیں اگر میں اسے ملتان سے ارینج کر کے دیتا ہوں تو اس کی ٹرانسپورٹیشن میں بھی خرچہ ہوگا, تو میں یہ چاہوں گا کہ اسے لیاقت پور میں یا رہیں یا سے میں اس کی ارینجمنٹ کر دوں تاکہ اس بچے کو کوئی پرابلم نہ ہو.
اچھا ڈاکٹر صاحب بہترین بات ہوگی. میں اب آپ ہیں تو میں آپ کو ایک اچھی سی خبر بتا دوں. آپ کو یاد ہے کہ امداد علی گوپانگ ایک دادو سے مریض تھا جس کو بلڈ کینسر تھا,
جسے میں نے کہا تھا کہ کراچی سے آپ کو دوائی لے لیا کریں, اور وہ
اور 2 لاکھ روپے کی اس کی دوائی ہر مہینے کی جو ہے.
بالکل,
تو پھر
وہی دوائی آج دے رہا ہوں, آج میرا اسی دوائی کا کیمپ ہے جو میں دوائی دے رہا ہوں.
اچھا اچھا, تو ڈاکٹر صاحب
میرے پاس آج 205 پیشنٹ ہیں جنہیں میں نے دینی ہے.
اچھا تو گوپانگ گئے بھی اور ہمارے ایک اور کالر نے ہی ان کا ارینج کر دیا تھا آنے جانے کا کراچی کرایا, کیونکہ دادو میں تو ظاہر ہی نہیں ہے, تو وہ ہر دو مہینے بعد جا کے دوائی لیتے ہیں اور ماشاء اللہ سے وہ ٹھیک ہیں, مطلب وہ انہوں نے دوبارہ سے کام شروع کر دیا بلڈ کینسر.
انشاءاللہ وہ ٹھیک رہیں گے, انشاءاللہ اللہ نے کیا تو ٹھیک.
تو ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کے. میں چاہتی ہوں تھوڑی سی, میں نے آپ کی کہانی سنی تھی, ایسے تو نہیں آپ کی زبانی سنی تھی جب میری آپ سے ملاقات ہوئی, میں چاہتی ہوں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے. آپ نے اپنے والد کے بارے میں بتایا تھا اور جو کہ میرا یقین ہے کہ ہم جو بھی بنتے ہیں اپنے والدین کی دعاؤں سے اور جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے اس سے ہم بنتے ہیں, تو تھوڑا سا اگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ جب آپ کے والد
پاکستان, میرے والد صاحب کی پیدائش ریاست فری کوٹ کی تھی, یہ انڈیا میں ہے جگہ, اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے 1914 میں.
اچھا,
اور پھر جب وہ میٹرک میں تھے تو پیرنٹس نے ان کی شادی کر, پھر ان کے شادی کے بعد انہوں نے تعلیم اپنی جاری رکھی, اور 1934-35 میں انہوں نے فیروزپور سے بی اے کیا اور پھر ریاست فری کوٹ کے پہلے مسلمان گریجویٹ تھے.
اچھا,
پھر انہوں نے 1938 میں لاہور سے ایل ایل بی کیا تو ریاست فری کوٹ کے پہلے مسلمان پوسٹ گریجویٹ یعنی لائر بنے. इसी बेस पे राजा फ्री कोर्ट ने उन्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी और रेवेन्यू ऑफिसर बना दिया।
अच्छा,
तो फिर उसके बाद उनके बच्चे भी हुए। तो ये बात है तकरीबन 26-22 जुलाई 1947 की, कि मेरे वाले साहब सैर कर रहे थे तो राजा ने उनसे पूछा कि जी मेरे वाले साहब को बुला के कि मुझे ये बताओ कि मुझे इंडिया में शामिल होना चाहिए या पाकिस्तान। तो मेरे वाले साहब ने कहा जी कि मैं नहीं कुछ मशवरा दूंगा, क्योंकि अगर मैं मशवरा दूंगा तो आप कहेंगे कि मुसलमान होने के नाते मैंने दिए। कहा नहीं तुम दो। कहा जी मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप पाकिस्तान में शामिल हों, इसलिए नहीं कि वो मुसलमान इलाका है, इसलिए कि पाकिस्तान जो बनने जा रहा है उसमें सिखों के बहुत ऐसी मकामात हैं, जैसे पंजा साहब है, लंकाना साहब है, जिनका वहां पे सिखों का लीडर नहीं होगा। तो जिस पे उन्होंने कहा जी कि बात ठीक है, मैं दरबार में जाके बात करूंगा। मगर जब दरबार में जाके बात की तो तमाम लोग मेरे वाले साहब के खिलाफ हो गए।
अच्छा,
तो फिर राजा साहब ने कहा ठीक है मैं इंडिया के साथ शामिल करता हूँ। तो 6-7 अगस्त को राजा साहब ने मेरे वाले साहब को अपने के साथ निकाल दिया, बच्चों समेत के तुम चले जाओ, नहीं तो आज तुम पे हमला हो जाएगा।
अच्छा,
वाले साहब मगरिब से पहले पहले गाड़ी में निकल गए और वही हुआ पे उनसे हमला हो गया। तो नतीजतन ये हुआ कि मेरी वालदा और मेरे बहन भाई तमाम शदीद जख्मी हो गए। और फिर वो जब फ्रीको से निकल के हांसी पहुंचे तो उन्होंने उन्हें अस्पताल में दाखिल किया, कैंप में ले गए और खुद चले गए तना लेने एक अपने जानने वाले हिंदू थानेदार के पास।
अच्छा,
जब उन्होंने पनाह मांगी तो उसने वाले साहब को गोली मारी, मगर वो गोली जो है उन्हें ऐसी जगह लगी वो बच गए और वाले साहब को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। और फिर वहीं पे उन्हें इत्तला मिली कि उनके बीवी बच्चे तमाम शहीद हो गए।
यानी कैंप
फिर मुख्तलिफ जेल भी कैंप में शहीद हो गए।
अच्छा,
तो फिर पाकिस्तान जब बन गया तो फिर ये लोग मेरे वाले साहब वहीं जेल में थे। इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो मेरे वाले साहब पे December 1948 में पाकिस्तान आए और फिर यहाँ कुछ भी नहीं था उनके पास। फिर उन्होंने मेरी वालदा से दूसरी शादी की और फिर तमाम लोग हम पैदा हुए और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। अगला जो इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि मेरे वाले साहब का इंतकाल 1991 में हुआ।
अच्छा।
और 1989 के एंड में वाले साहब को राजा फरीदकोट का लेटर मिला और राजा फरीदकोट ने मेरे वाले साहब को लेटर में ये लिखा कि तुम ठीक कहते थे कि मुझे पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए।
अच्छा, क्या उनका नाम क्या था राजा साहब जो थे?
मुझे इस वक्त राजा साहब का नाम याद नहीं है।
अच्छा,
धर्मिंदर सिंह या इस किस्म का कुछ था, रंजिंदर सिंह, तो इसके मुझे याद नहीं है उनका नाम, राजा फरीदकोट के थे।
अच्छा,
तो फिर उन्होंने इंडिया ने तो पार्टीशन के बाद ना रियासतें खत्म कर दी थी, रियासतें पाकिस्तान में कायम नहीं और इंडिया में खत्म हो गई थी रियासतें।
डॉक्टर साहब, मुझे ये कहानियाँ जो हमें सुनानी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान बने अब इतना अर्सा हो गया कि कई नस्लें जवान हो गई उसके बाद, तो बहुत दफ़ा मुझे एक दफ़ा किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हुआ यह है कि लोग कुर्बानियों को याद नहीं रख पाए, क्योंकि बहुत से लोग तो रात को सोए और सुबह जब उठे तो एक आज़ाद मुल्क में बैठे थे, तो उन्हें यह पता ही नहीं लगा कि उस मुल्क तक पहुंचने के लिए, उस आज़ादी को देने के लिए कितने सारे लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो आपके वालिद भी ज़ाहिर है उनमें से एक थे अपने ख़ानदान के साथ, तो बहुत यानी वो कहते हैं ना कि हकीकत जो है अफसाने से ज़्यादा हैरत अंगेज होती है, तो आपने जो अभी हमें सुनाई ये वाकई एक बहुत ही दर्दनाक। और तो आपके वाले साहब ने प्रैक्टिस की फिर यहाँ के लॉ की?
जी, मेरे वाले साहब ने प्रैक्टिस की थी। मेरे वाले साहब रिकवरी रेवेन्यू ऑफिसर रहे हैं यहाँ पे, फिर सरकारी वकील रहे, रिटायर्ड इन 69।
अच्छा,
पंजाब यूनिवर्सिटी क्रिमिनल लॉ।
अच्छा,
और फिर मुल्तान लॉ कॉलेज के बानी थे मेरे वाले साहब। मगर जब वो 78 में उन्होंने हज किया तो उन्होंने कहा जी कि अगर मैं वकालत करता हूँ तो मजहब से झूठ बोलता हूँ, और अगर मैं मजहब की तरफ जाता हूँ और प्रोफेशन जारी रखता हूँ तो फिर मैं प्रोफेशन से झूठ बोलता हूँ, क्योंकि प्रोफेशन में आपका कहता है कि जो आपका क्लाइंट है उसकी बात सुनो और उसे आपके प्रोफेशन के मुताबिक उसे डील करो, और वो कहते हैं वो झूठ है। देन आफ्टर परफॉर्मिंग हज 26 अगस्त 1978 को उन्होंने वकालत को खैरबाद कर दिया।
डॉक्टर साहब, बार बार ये जब कहानियों का प्रोग्राम जब से किया है तो मुझे ये लगता है कि काश किस मुल्क में आपके वालिद जैसे साहिब ज़मीर जो हैं बहुत सारे वकील और जज और हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन और भी बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि इस कदर बेकसी की कहानियाँ होती हैं, लोग अदालतों के चक्कर लगाते लगाते बूढ़े हो जाते हैं, कई कई लोग जो है ना 40-50 साल से एक ही मुकदमा लड़े जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं हसब मामूल आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे हमें इतनी अच्छी अपने वाले साहब की कहानी सुनाने के लिए। आपने नाम नहीं बताया, आपके वाले साहब का नाम क्या था?
मेरे वाले साहब का नाम था जी मलिक वली मोहम्मद।
हम सब की यही, मुझे डॉक्टर साहब की आवाज़ कम आ रही है, लेकिन डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका शुक्रिया और इंशाल्लाह अब आपसे वो जो बच्ची के लिए काम था उसकी कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी और तब हम अपने सुनने वालों को थोड़ी अपडेट भी दे सकेंगे कि क्या आतिफ के केस में क्या पेशरफ्त हुई, दवाई मिल गई या नहीं, और जो मुझे पूरे यकीन मिल गई होगी। तो हम डॉक्टर साहब को खुदा हाफिज़ कहते हैं और अब चलते हैं एक बार फिर प्रोमो की तरफ ताकि आप हमारे पते नोट कर सकें एक बार फिर। और ये अभी जो आप कहानी सुनेंगे जब हमारे अमन की, अमन अली की, इनका असली नाम अमन नहीं है, हम मसलहतन हमने नाम इनका बदला है, कहानी सुन के आपको अंदाज़ा होगा कैसा हमने क्यों किया। तो इनके पास भी कहानी इनकी नहीं थी, जब आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा अटक अटक के सुना रहे हैं, लेकिन वजह यही है कि इन्होंने कहानी की कॉपी नहीं रखी थी, मगर उसकी नौयत ऐसी है इनके मसले की कि हमें वो कहानी नशर करनी थी तो हमने रिकॉर्ड किए। तो लीजिए सुनते हैं पहले प्रोमो, फिर अमन की कहानी सुनेंगे।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बच्चे लोग को मारते हैं, बिजली पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपए लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
तो सामिन, ये प्रोमो आपने सुना, पते नोट कर लिए होंगे आपने, और उम्मीद है कि आप जब कहानियाँ भेजेंगे तो उसकी कॉपी अपने पास ज़रूर रखेंगे। अगली कहानी का, जैसे मैंने आपको बताया, अमन की कहानी है, अमन अली, ये इन्होंने भेजी है कराची से हमें। इनका बुनियादी ताल्लुक जो है खैबर पख्तूनख्वा से है। आप प्रोग्राम के दौरान इनकी और इनकी बच्ची की तस्वीरें भी देख सकेंगे, लेकिन मैं भी से बता दूं कि तस्वीरें हमने धुंधली कर दी हैं ताकि इनकी शनाख्त ना हो सके, और इसकी वजह क्या है ये आपको कहानी सुन के अंदाज़ा होगा। तो चलिए अमन की कहानी सुनते हैं, फिर हम आप उनसे और उनके वाले साहब से बात भी करेंगे।
टोटल हम 5 भाई है, बहन हमारी कोई नहीं है। तो वहाँ पे इस तरह की रवायात बहुत सारे है कि गैरत के नाम पे और जाके कत्ल कर गए, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ बहुत सारी हुई है, मेरे सामने हुई है, कितने लोग मार दिए हैं। पढ़े तो हम काफी मुश्किल से हैं क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, वो असल में माली हालत थोड़ी कमजोर थी। अबू तो काम करते थे कभी भिंडी में, कभी उसमें तुरबेला डैम में भी, तो हमने गवर्नमेंट स्कूल से सब भाइयों ने पढ़ा है। मेरा बड़ा भाई माशाल्लाह वो थाने की नजदीक में जॉब कर रहे हैं, मैं तो एक प्राइवेट रेस्टोरेंट है उसमें हूँ। मैंने एंटर किया तो एंटर के बाद मैं गांव से निकल गया, मेरे भाई आगे जो बड़ा भाई है वो पढ़ना चाहता था और उसको पैसे जो है ना पूरे नहीं हो रहे थे। मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा मैं निकल जाता हूँ, मेहनत मजदूरी करके चलो आप लोग पढ़ो। फिर मैंने चलाया पहले मैं पेशावर में काम करता रहा, कोई सब्जी वगैरह दी मैंने रेड़ी पे लगाई काफी अर्सा मैंने वो किया। फिर उसके बाद मैं कराची चला गया, कराची में एक रेस्टोरेंट था काफी मशहूर रेस्टोरेंट है, वहाँ मैं वेटरी करता रहा। तो उसमें जो भी पैसे मैं कमाता रहा मैं घर बेचता रहा, मेरे बाकी भाई पढ़ते रहे और मेरे घर का सिस्टम उससे चल रहा था और वो जो बड़ा भाई था वो पढ़ रहा था और जैसे छोटे मैं आगे पढ़ नहीं सका। इसी वजह से कि हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी क्योंकि पढ़ नहीं सकते थे, पैसे लगते हैं। मसला ये है कि उनका बचपन में यहाँ पे एक और भी रवायत थी, वो ये कि मतलब लड़की हो गई किसी के घर बच्चे फिर उसके फैमिली में अब्बू का भांजा एक है, तो इन्होंने कहा था बचपन में कि चलो ये मेरी बेटी है और ये हम इनको देंगे। तो जब मैंने इनसे रिश्ते का कहा तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो इनको हमने कहा है और ये तो उनकी उनकी उसकी शादी होगी। बहरहाल वो इस पे वो भी राजी नहीं थी, उसने फिर अपने भाई बड़े भाई को बताया, अपनी अम्मी को बताया, अपनी बहनों को बताया, जब मेरा नाम बताया मैं उसको पसंद करती हूँ मैं उससे शादी करूँगी, तो उन्होंने नहीं माना। उसके बहुत कहना कोई मार पिटाई भी पड़ी उस वक्त भी, उसकी एक बड़ी बहन ने उसको मारने की कोशिश की थी। उसने अपनी अम्मी को कहा मेरी खाला को कि इसको मार दो, मेरी जो बेगम है कि इसको मार दो, ये क्यों कह रही है कि मैं पसंद की शादी कर रही हूँ या ये या वो। उसके बाद ये फिर फैसला हो गया कि उन्होंने मुझे फोन किया मेरी बेगम ने कि मसला ये है कि मैंने तो बता दिया, भाई को भी बता दिया और अम्मा को बता दिया, बहनों को बता दिया कि मैं जो आप लोग जहाँ मेरी शादी करवाना चाहते हैं मैं वहाँ नहीं कर सकती। मेरी अम्मी है और उसकी चार और बहनें हैं, तीन इनके भाई हैं, यानी तीन मेरे मामू हैं, चार मेरी खाला हैं, यानी पहले से हमारा ये रिश्ता बहुत गहरा है। तो अब हमने मतलब सुलह की भी बड़ी कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रहे, वो भी नहीं मान रहे हो। एक हमारे जो ट्रेडिशन है तो ये लोग जो है ना ये भी बातें करते रहते हैं कि लो जी ये हो गया और वो हो गया, अभी इन्होंने मतलब इनको मारा नहीं, ये तो बेगरत है और फलां है ढमकाना है। तो इसी तरह ये अभी भी गांव और हमारे इलाके में ये रवायात है कि इस तरह मार देते हैं, तो इनको कोई मसला ही नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट को मानते हैं, ना किसी पुलिस केस को मानते हैं, ना अदालत को मानते हैं।
तो जब आपने फैसला किया, जवाद क्या नाम रखा आपने, हमल, हमल जब आपने फैसला किया शादी का, तो माँ बाप रिश्ता वगैरह लेके आपके माँ बाप राजी थे?
ये मेरे मैंने क्योंकि पहले अपने माँ बाप को नहीं बताया था इस तरह की ये सीन है, मैंने उनको नहीं बताया था ये बात कन्फर्म है। हाँ बगैर मैंने खुद वजात खुद मैंने अपने खाला से बात की, मैंने कहा मैं इस तरह पसंद करता हूँ, तो ये उन्होंने कहा नहीं ये तो हम बस हमने किसी वो दूसरे उनका एक कजन है उसको कहा है। और मैंने कहा यार कहा है सर क्या मतलब है, ये सब अभी लड़की बच्ची थी उसको पता नहीं है आप लोगों ने ये रिश्ता कर लिया, अब ये बड़ी हो गई आप उनसे पूछे। उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारे रवायात के खिलाफ है जी, इससे तो हम बेइज्जत हो जाएंगे।
तो सामिन कहानी का और भी है, काफ़ी तफसीली कहानी इन्होंने सुनाई, ज़ाहिर है कि जैसे कि मैंने शुरू में बताया इन्होंने लिखी नहीं थी ज़बानी, इन्होंने कहानी सुनाई अमन ने। अमन हमारे साथ हैं, आवाज़ आ रही है आपको अमन हमारी?
बिल्कुल आ रही है।
आपने बहुत अच्छी कुछ बातें कही थी लेकिन उसके लिए बहुत आगे तक जाना पड़ता कहानी में, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बड़ी मुश्किल आपने ज़िंदगी गुजारी है और गुजार रहे हैं इस वक्त आप, पहले आपने स्ट्रगल की अपने भाइयों को पढ़ाने में मदद की, जब आप खुद एक बच्चे ही थे जब आप गए सब्जी तक आपने बेची और रेस्टोरेंट में काम किया, जो बड़ी फ़खर की बात है कि आपने मेहनत करके कमाया और भाइयों को पढ़ाया, लेकिन अब जो आपके साथ सबसे बड़ा मसला है जो मुझे समझ में आया वो ये है कि आपको सिक्योरिटी का एहसास नहीं है, ख़ासतौर पर एक बच्चे के साथ आपको लगता है कि कोई ना कोई पीछा कर रहा है हर वक्त, तो थोड़ा सा बताइए उस बारे में हमें।
जी बिल्कुल, ऐसा तो सिक्योरिटी के तो हादसा है, मैंने पीछा तो करे बताया था कि कुछ लोग कुछ आए भी थे यहाँ डेढ़ दिन, वो मुझे पकड़ लिया था, मुझे पता चल गया फिर मैं यहाँ से मतलब कुछ दो महीने के लिए यहाँ से चले गए। तो मैं यहाँ मेरे एक कजन था, मैं उसके खतरा में रहता था कि अब एक्सीडेंट है तो मैं वापस आ गया काम पे, क्योंकि काम के बगैर फारे बैठना भी वो भी सही नहीं है, क्योंकि जिंदगी भी गुजारनी है, आगे भी सोचना है, तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, इसलिए वो सिक्योरिटी का तो खर्चा अभी भी है, वो तो मेरे साथ है। इस वजह से मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ बाहर की भी, कि मैं विद फैमिली कहीं ना कहीं एजाइलम मिल जाए तो उसकी भी कोशिश में मैं हूँ।
अच्छा,
तो अभी भी मुझे
तो जैसे कि आपने मुझे बताया था और मैं चाहती हूँ कि आप सुनने वालों से शेयर करें, बहुत दफ़ा लोगों को, ये तो आपका अपना खून है जो जुल्म आपके साथ हुआ, लोगों को ये एहसास नहीं होता कि वो किस तरह की मोहब्बत से महरूम कर रहे हैं किसी शख्स को। जैसे आपके बच्चे ने तो अपनी ननियाल की तो शक्ल ही नहीं देखी, ददियाल में भी मेरा ख्याल है उसने लोगों को नहीं देखा होगा, तो कैसा आपको लगता है कि आपका बच्चा बस उस रिश्तेदारों से महरूम है बिल्कुल? अमन,
हाँ तो सूरत में, हाँ जी जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ
जी। नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगता है।
तो जाहिर है तकलीफ तो होती है, और वो भी चाहते हैं, वो कभी कभार मतलब वो जिक्र भी करते हैं जी, यहाँ जो अड़ोस पड़ोस में लोग हैं वो अक्सर बच्ची कहते हैं कि हमने आज दानों के घर जाना है, या तो इस तरह एक दिन उसने भी कहा था कि हम भी जाएंगे, मैंने उसको कहा ठीक है हम जाएंगे, तरह गाँव जाएंगे, ये होगा वो, बहरहाल वो भी पूछता है, हमें भी एहसास होता है, लेकिन हम अपने जो ट्रेडिशन है उस पर जो ना लोग बहुत मजबूर हैं, जब तक वो मानेंगे नहीं, जब तक वो सुबह के लिए राजी नहीं होंगे तो ये मुमकिन नहीं है।
अच्छा, आपके वालिद साहब हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद हैं, अभी हमारे साथ रहिए। जी जी, आपके वालिद साहब भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? मैं अमन के वालिद साहब से बात करना चाह रही हूँ, उनको गालबन सादिया हमारी आवाज़ नहीं आ रही, अगर आप उन्हें बताएं। अहमद साहब यानी इनके अब्बा जो हैं। अच्छा, आपने काफ़ी कोशिश की, आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह से भी सिलसिले में कॉन्टेक्ट्स किए, थोड़ा सा उस बारे में बताइए अमन, क्या क्या बातें, किस किस से आपने मुलाकात की सिलसिले में सिक्योरिटी के लिए?
वो असल में मेरी वालिद साहब ने मुझे बताया था, ये रास्ता दिखाया था कि आप ये एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इदारा है जो रिफ्यूजी या इस तरह के लोगों की मदद करते हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम करते हैं
जी।
तो मैंने उनसे एक, मैंने इंटरनेट मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैंने उस पर गूगल पे सर्च किया और उनका एक ऑस्ट्रेलिया का मुझे एक एड्रेस मिल गया, ईमेल का जो एक लेडी थी शायद दिल्ली
जी
मोदी, तो उससे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, उसको मैंने ये सिचुएशन बता दिया कि मुझे सिक्योरिटी यानी चाहिए, मैं यहाँ अपने मुल्क में सिक्योर नहीं हूँ, और उसने उन्होंने फिर मेरा केस तो ले लिया, लेकिन बाद में मुझे बताया कि ये हम आपको एजाइलम नहीं दे सकते आपको, तो आप इन कंट्री है, तो आप अपने ये, उन्होंने मुझे डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक लिंक दिया, एक वेबसाइट है उनका इमिग्रेशन का, उस पर जाए कि उस पर ह्यूमैनिटेरियन बेस प्रोग्राम, उसमें आपको जो है ना एजाइलम मिल सकता है, तो उसका प्रोसीजर मुझे सारा उस लेडी ने बताया जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के, फिर मैंने वो कर दिया, वो भी कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ चला गया अपने पाकिस्तान में, ह्यूमन राइट्स के जो कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके पास भी गया, और मैं आप शायद जानती हैं एक वकील है वो आत्मा जहांगीर
जी, जी जी
मैं उसके पास भी गया।
अच्छा,
उसके पास भी गया, मैंने उनको भी सुनाया कि मेरी कोई मदद करे मेरी सिक्योरिटी में, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हम आपकी कोर्ट में अपील कर देंगे और इस तरह कोर्ट के थ्रू आपको ले देंगे जाऊँ, मैंने कहा वो आप नहीं मानते कोर्ट को, वो फिर भी, तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया कि नहीं फिर हम इसमें अपील नहीं कर सकते, तो मैंने फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ जो रब्ता किया, उनको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए सारा सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि ये इनवैलिड है और इसमें आपको हमें एक प्रपोजल देना होगा कि जो यहाँ का कोई शहरी होगा या कोई मतलब उनकी नेशनलिटी होल्डर होगा तो वो आपको एक प्रपोजल दे सकता है, तो वो फिर मेरे पास नहीं था, मैंने उनको कहा कि मेरे पास ऐसे कोई बंदा नहीं है ना, मैं किसी को जानता हूँ वहाँ, तो उन्होंने फिर उसमें भी रुकावट आ गई, बहरहाल उन्होंने फिर मुझे और एक और भी रास्ता बताया कि आप ये एक फॉर्म जो है ना हमारे दुबई में हमारे कॉन्सुलेट है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट है वहाँ, ये वहाँ भेज दे तो हो सकते हैं। अब मैंने डॉक्यूमेंट दोबारा भी तैयार करवाए हैं, इंशाल्लाह वो भी भेजूंगा। हाँ
मुझे बड़ी खुशी है, आप बड़े समझदार नौजवान हैं और सही तरीके से आपने काम किया। मगर मैं यहाँ पे एक बात ही कहना चाहूँगी कि ये ठीक है, असाइलम एक हाल इसका ज़रूर है, मगर ये एक बहुत ही पेचीदा जो है ना मरहला है इसका, तो ये आसान नहीं है मुल्क से बाहर जाना। लेकिन ये कि कोशिश जो आप कर रहे हैं, हो सकता है ये कामयाब हो और बहुत से लोगों की कामयाब हुई है। इसमें मुझे एक उम्मीद की बात की नज़र आती है कि आपने जिस लेवल पे कॉन्टेक्ट्स किए हैं, जैसे असमा जहांगीर से या बहुत सी कानूनी इदारों से, एमनेस्टी से, ह्यूमन राइट्स कमीशन से, और मैं भी कोशिश करूँगी, मैं ख़ासतौर से कोशिश करूँगी कि कोई सरकारी जो लॉ से मुतालिक लोग हैं उन लोगों से बात करने की। तो आपका, आपके ऊपर हाथ डालना इतना आसान नहीं है कि कोई देखिए, मेरा ख्याल है कि लोगों को ऐसा ऐसा ही समझ आ रहा है कि वो ज़माने चले गए अब, कि गैरत के नाम पे कत्ल करके और लोग भाग जाया करते थे। गैरत के नाम पे जब कत्ल करते हैं तो आप भी जेलों में सारी ज़िंदगी सड़ते रहते हैं, मुकदमे भुगतते हैं और मौत की सज़ाएं भी होती हैं। तो ये सबको याद रखना चाहिए कि अपने किसी प्यारे को या अपने किसी अजीज़ को कत्ल कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप बरी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। अगर आप पकड़े गए तो आपको वही सज़ा होगी जो आप किसी को भी कत्ल करें उसकी सज़ा होगी। तो आपके वालिद साहब साथ हैं, मेरा ख्याल अब उनको आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी, एम एस साहब?
आवाज भी मुझे तो आ तो रही है लेकिन बहुत साफ नहीं है, बहरहाल मैं सुन रहा हूँ।
अच्छा, आपकी आवाज हमें बहुत अच्छी आ रही है। पहले तो मुझे अच्छा। बड़ी खुशी है कि आप हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं। मुझे इन्होंने बताया अमन ने कि आप हर वक्त,
मैंने मशवरा दिया था इसको कि आपसे राबता करे, और आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने, बस क्या बताऊं, बहुत नेकी आपने की है, बाकी हमारी अपनी किस्मत है।
मैं ये कहूंगी आपसे, एक ही खानदान के आप लोग हैं ना, आप कैसे इतने रोशन दिमाग हैं? आपने अमन की शादी को कबूल भी किया, अपनी बहू को भी कबूल किया, आपको समझ में आ गया कि उसने पहले रिश्ता भिजवाया, सब कुछ किया।
रिवायत की मुश्किलात तो मुझे है ना, वो जहालत तो है ना, अभी माशरे में, हमारे माशरे में जहालत तो है, मैंने कबूल तो किया है
जी,
क्या करूं। लेकिन दूसरी तरफ से जो है ना, मैंने काफी कोशिश की है, यानी सुलह कराने की।
अच्छा।
आलिमों और सैयदों और जितने भी यानी मौजूदीन है वो उसके जरिए जो है उनसे बात, लेकिन वो नहीं मानते, अल्लाह जाने।
मैं बल्कि यही पूछना चाह रही थी आपसे कि कबायली इलाकों में आमतौर से जो कबायली बुजुर्ग होते हैं वो जिरगा वगैरह करके हल कर देते हैं, तो उसका कोई इम्कान नहीं है इस मामले में कि ये कुछ हो सके।
वो कोशिश करते हैं, इसमें मतलब है कि फैसले हुई भी है, होती भी रहते हैं इस किस्म के केसों में, होती भी रहते हैं। इसमें एक मसला ये कि दो तरफ से है ना, यहाँ इसकी मिस्तक हो गई थी मेरी बहू की
जी
पहले।
अच्छा।
तो वो तो अभी वो उधर भी है, इधर भी मसला दो तरफ है।
अच्छा।
तो
कि वो भी नाराज हैं कि हमारी जो होने वाली यानी बीवी थी।
हाँ हाँ, लेकिन हालांकि उसको काफी लोगों ने समझाया भी है कि ये अभी इसको कबूल कर लो, मतलब है कि अगर से रिवायत में, पुख्तों रिवायत में ये भी है सुलह, इसकी भी गुंजाइश है, लेकिन अभी तक नहीं मान रहे हैं, अल्लाह जाने। तो हम जरा खौफजदा रहते हैं, इसके बारे में जो परेशानी रहती है, वो उसमें जो जिस किस्म की मदद मांगी है आपकी, अगर आप
मुझे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनका जो मामला है, आपको इनको खुद असमा जहांगीर वगैरह ने भी जो बातें बताई, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है तो शायद ये भी हो जाए, और हम अपनी से पूरी कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले कहानी हमने सुनाई थी जो एक साल पहले मसला सामने आया था और अब जाके वो हल हुआ, तो वक्त तो लगता है, क्योंकि जाहिर है कि हमारा तो यही है कि हम चाहते हैं उसी माशरे से कोई हमें ऐसा मिल जाए। मगर मैं अभी ये दुआ करती हूँ कि जो उस बच्ची के माँ बाप हैं ان کی سمجھ میں بات آ جائے, وہ معاف کر دیں ان لوگوں کو اور اپنے نواسے کو قبول کر لیں, اس بچے کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟
بس پتہ نہیں, ہم کوشش تو ہم یعنی کوئی لمحہ ہم نے ایسے چھوڑا نہیں, ہم نے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ سے چاروں طرف سے مطلب ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہو رہی, مان نہیں رہے.
تو
کبھی ایک بات کبھی دوسری بات, بس بہانے بناتے ہیں.
اصل میں یہ وہی معاملہ ہے, میں آپ کی بے بسی کا اندازہ کر سکتی ہوں, اور آپ جس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ آپ خود ڈپریشن میں چلے گئے ہوں گے, ظاہر ہے آپ کا بچہ, آپ کا پورا خاندان آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کو برا لگتا ہوگا. تو ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ میاں آپ کا مسئلہ حل کرے اور ہنسی خوشی آپ لوگ پھر مل کے رہنے لگیں. میں آمین. امن بہت شکریہ اپنی کہانی سنانے کا, اور میں سمجھتی ہوں اس کہانی. اچھا امن ایک بات میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے, یہ سب کچھ تو ہے اپنی جگہ, لیکن آپ خوش ہیں اپنے فیصلے پر؟ آپ کی اپنی زندگی کیسی ہے ایک گھریلو زندگی کے لحاظ سے؟
بالکل ماشاء اللہ, میں اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں. میں خطرہ رہتا ہے اور باقی ہم اپنے آپس میں ہم بہت خوش ہیں. میں اپنے ابو اور امی سے ان کے فون پہ ہم کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں, میرے بھائی ہے ان سے بھی رابطہ ہوتا ہے, بہت خوش رکھتا ہوں. جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ان کی ہر ایک خواہش پوری کرتا ہوں, جو تو مطلب کہ میں ان کو خوش رکھتا ہوں.
بالکل,
تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بہت خوش ہوں. فیصلے کی جو پرابلم ہے نہیں ہے, ہم بس دعا کرتے ہیں کہ حل ہو جائے. تو جب تک میں اس کوشش میں اس لیے لگا ہوں کہ اگر میں کہیں مطلب ایسی جگہ چلا جاؤں تو یہ پریشانی نہ ہو, اور بہتر ہوگا. جب تک مسئلہ حل ہو جائے گا ان شاء اللہ کوشش کریں گے. اب چھ سال ہو گئے, چھ سال میں نہیں مانے, اب دیکھتے ہیں آگے کتنی زندگی گزرتی ہے.
چھ سال ہو گئے مگر چھ سال میں ہم اپنی تصویر دکھا تو نہیں سکے. بہت ماشاء اللہ آپ کا پیارا سا بیٹا ہے, اور خود آپ لوگ کچھ ساتھ دیکھ کے مجھے پتہ لگا کس طرح آپ لوگ کھیل کود رہے ہیں, بچے کے ساتھ آپ خوش ہیں. تو بہت میں ہم سب کی دعائیں ہیں سننے والوں کی آپ کے ساتھ, کہ آپ کی زندگی اور بھی اچھی ہو. میں آپ کا امن شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ کے والد صاحب کا بھی, اور ہم کوشش جاری رکھیں گے. اب آپ نے بات بات کہانی سنا دی ہے, کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. سامعین, یہ امن ہمارے ساتھ تھے, امن احمد کراچی سے اور ان کے والد صاحب اپنے گاؤں سے. میں اگلی کہانی کی طرف ہم چلتے ہیں. پرومو میں اس لیے نہیں سنوا رہی کہ کہانی ہم سنوائیں, اچھی سی کہانی ہے ایک اور ہمارے پاس, اور وہ کہانی ہمیں بھیجی ہے عارف اقبال صاحب نے. وہاڑی میں جگہ ہے, اب میں پتہ نہیں صحیح پڑھ رہی ہوں, یعنی گگو منڈی, لیکن یہ ہمیں عارف صاحب بتا سکیں گے. جی اقبال عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اقبال عارف صاحب
جی,
وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کے اس کا منڈی کا؟
گگو منڈی.
گگو منڈی, اچھا اچھا. تو سادیا بول کے گگو کہہ رہی تھی, تو میں نے تھوڑا سا میں نے اس پہ پیش لگا دیا. تو چلیے, اچھا اچھا. تو چلیے آپ کی پہلے ہم کہانی سنتے ہیں, بہت اچھی پیاری سی کہانی ہے آپ کی بھی, اس کے بعد بات کریں گے. جی سادیا انجم, اگر کہانی سنو.
السلام علیکم. محمد اقبال عارف, ریٹائرڈ ٹیچر, چاک نمبر 195, ای بی گگو منڈی, ضلع ویاڑی سے اپنی کہانی پیش کر رہا ہوں, جس کا عنوان ہے بچپن کی منگنی, در منگنی اور شادی کی رسومات. 1952 کو 4 سال کی عمر میں میری 6 ماہ کی لڑکی سے منگنی کر دی گئی, لیکن عرصہ 2 سال کے بعد والد محترم نے آپس کی ناراضگی پر رشتہ لینے سے انکار کر دیا, اور یوں میری پہلی منگنی ہی ٹوٹ گئی. میں واضح کر دوں کہ میرے والد برادری کے سرپنچ تھے, اس لیے اثر رسوخ کے مالک تھے. جب میری عمر 6 سال ہوئی تو ایک رشتہ دار کے ہاں منگنی کی بات چلی, تو اس رشتہ میں برادری کا ایک آدمی نہ چاہتا تھا کہ آپس میں جوڑ میل ہو جائے. اس نے میرے ہونے والے سسر کو مشورہ دیا کہ رشتہ لے کر ہی رشتہ دینا, ورنہ نہ دینا. اس تقاضے پر والد نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے. مزید زور دینے پر وہ لڑکی کا رشتہ دینے پر تیار ہو گئے. اس طرح اب میری دوسری بار منگنی ہو گئی, لیکن وہ نہ چاہنے والا آدمی اپنی چال چلتا رہا. والد صاحب نے سوچا کہ یہ بیل منڈیر چاٹتی نظر نہیں آتی, سو ناراضگی میں 4 سال کے بعد یہ رشتہ بھی لینے سے انکار کر دیا, لہذا دوسری بار بھی منگنی ٹوٹ گئی. اب 1960 کو میں ابتدائی سکول جماعت چہارم میں زیر تعلیم تھا, عمر 12 سال ہوگی. جب ایک دور کے ماموں نے میرے حقیقی ماموں کے گھر آ کر کہا کہ بھائی جان میں اپنی بیٹی تمہارے جھولی میں ڈالتا ہوں، بیٹی کا رشتہ جدھر چاہو کر دو اسے منظور ہے۔ اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس بات پر میرے ماموں نے والد صاحب کی طرف اشارہ تان دیکھا تو میرے والد نے کہا کہ اسے یہ رشتہ قبول ہے۔ اس طرح پھر میری تیسری بار منگنی ہوگی۔ لڑکی کی عمر 6 سال ہوگی۔ میری منگنی پر باقاعدہ خوشی منائی گئی، لیکن لڑکی دیکھی نہ بھالی، بس ہاں کر کے میری قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ والد صاحب ان کے ہاں جہانیہ منڈی ضلع ملتان کے گاؤں دور ہونے کی وجہ سے کبھی گئے بھی نہیں تھے۔ اس وقت آپس کے رشتوں کے تعلق کو ہی دیکھا جاتا تھا۔ میری منگنی کو 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ میری منگیتر کی بڑی بہن کی شادی کے دن مقرر کر دیے گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چھوٹی لڑکی عمر 6 سال کا بھی ساتھ ہی نکاح کر دیا جائے۔ 1960 سے پہلے فیملی ایکٹ کے تحت چھوٹی عمر کی شادی جائز اور اس کی اجازت تھی۔ جون 1960 کو ہمارے گھر بدریہ قاصد اطلاع ہوئی کہ لڑکے کو نکاح کے لیے دوسری بارات کے ساتھ لے کر آئیں۔ والد صاحب نے قاصد کے ہاتھ ہاں کا پیغام بجوا دیا۔ جب میں اسکول سے واپس آ رہا تھا، گھر پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں بچوں نے خوشی میں میری شادی کی خبر کی اطلاع کر دی کہ آہا تمہاری شادی ہے، اور مذاق بھی کرنے لگے۔ بچپن میں میں بہت شرمیلا تھا، گھر آ کر کمرے کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا کیونکہ مجھے شادی کی خبر اچھی نہ لگی۔ بہرحال تیاریاں ہونے لگیں، رات کو عورتوں نے گیت گانے شروع کر دیے۔ مجھے کہا گیا کہ میرا نکاح ہوگا، مولوی صاحب کلمے پڑھائیں گے۔ میں نے بھولے پن میں کہہ دیا کہ 4 کلمے تو مجھے یاد ہیں۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، لہذا سن کر سب خوش ہوئے۔ آخر کار مجھے دوسری برات کے ساتھ والد کی ہمراہی میں جانا پڑا۔ بارات کو رات ٹھہرایا گیا، مولوی صاحب آئے، میں بھی چار پائی پر پاس بیٹھ گیا کہ میرا بھی نکاح ہوگا، لیکن مولوی صاحب نے بڑے دلہا کو نکاح پڑھایا اور چلے گئے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرا نکاح تو پڑھایا ہی نہیں گیا۔ بھائی نے ہنس کا جواب دیا کہ تیری بیوی بہت کم عمر ہے، اس لیے لڑکی کی والدہ لڑکے کے والد نے بچوں کے نابالغ ہونے کی صورت میں ایجاب و قبول کر لی ہے، لہذا تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ میں چپ خاموش، میرے رشتہ دار بہت خوش تھے، اندازہ کریں جیسے انہوں نے سچ مچ گڈے گڈی کا بیاہ رچایا ہو۔ اگلے روز شام کو بارات کو رخصت کر دیا گیا۔ میری 6 سال کی دلہن کو بھی سادہ سا جہیز سامان دے کر میرے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ واپسی دیر گئے، گھر کے لیے بس پر سوار نہ ہو سکے۔ گرمیوں کے دنوں میں رات بس اسٹاپ اڈہ 14 پل جہانیہ منڈی پر گزاری۔ اس وقت اس اڈے پر صرف 1-2 عارضی دکانیں تھیں۔ اس طرح تیسرے روز صبح بس پر سوار ہوئے اور واپس شام کو گھر پہنچے۔ ہمارے گھر میں کافی گہما گہمی تھی۔ میری ننھی سی دلہن اٹکیلیاں کرتی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر دوڑتی اور کھیلتی، لیکن میں اس کا سامنا کرنے کو تیار نہ تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ کھیلتا۔ تیسرے روز میری دلہن واپس میکے چلے گی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ چلی گئی ہے، کیونکہ میرے ہم عمر بہت مذاق کرتے کہ دیکھو تمہاری دلہن کیا کر رہی ہے۔ اس کے بعد سنا گیا کہ اسے اسکول میں بھی داخل کرا دیا گیا ہے کہ لڑکا پڑھ رہا ہے، لڑکی کو بھی پڑھانا چاہیے۔ میرے والد بعد میں میرے سسرال آتے جاتے رہے اور میرا ذہن بدلنے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کا گھر صاف ستھرا نہ ہے، اچھے لوگ نہ ہیں، کیونکہ میرے والد کا ارادہ بدل چکا تھا۔ جب میں 1964 کو جماعت نامہ میں زیر تعلیم تھا تو والد نے مجھ سے طلاق کا نوٹس بھجوایا۔ یونین کونسل سے تاریخ پیشی کی اطلاع ہوئی۔ اس وقت میں بالغ تھا۔ اب میں نے دل ہی میں ٹھان لی کہ اگر لڑکی سے صلح کے لیے ملاقات کرائی گئی اور وہ دل کو اچھی لگی تو میں طلاق نہیں دوں گا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ فریق ہمارے خاندان سے پہلے ہی سے مرعوب ہونے کی وجہ سے حاضر عدالت نہ ہوا۔ میری طرف سے تصدیق ہو جانے پر 90 دن عدت کے بعد طلاق مؤثر ہو گئی۔ میٹرک کا امتحان 1966 کو پاس کیا تو بری والا ٹیکسٹائل مل میں ملازمت مل گئی۔ اب جو دوسرے نمبر پر منگنی ٹوٹی تھی وہ رشتہ دار بعد میں بہت پچھتائے اور کسی کے کہنے پر خراب ہوئے۔ انہیں لڑکی کے بالغ ہونے پر کوئی مناسب رشتہ نہ مل سکا۔ ادھر میری منگنی کیا کم عمری کی شادی بھی ناکام ہو چکی تھی۔ اب پرانے رشتہ دار منگنی کو بحال کرنے کی فکر میں میرے والد سے ملنے کے موقع کی تلاش میں تھے کہ اچانک میری پھپھی کا انتقال ہو گیا۔ تعزیت کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ختم رسم چہلم پر باتوں باتوں میں ہونے والے سسر نے میرے والد سے کہہ ہی دیا کہ بھائی جان ہم دونوں پھر سے اسی طرح ہو جائیں جس طرح پہلے بھائی تھے۔ میرے والد نے اشارہ سمجھ کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ میرے قریبی رشتہ داروں نے کہا کہ یہ رشتہ ہونا مناسب نہ ہے، لیکن والد کے آگے سب بے بس تھے۔ میری مگیتر کو اب کے بھی دوبارہ دیکھنے جانے کے لیے کسی نے کوشش کی نہ ہی والد صاحب نے موقع دیا۔ کچھ عرصہ بعد شادی کے دن مقرر کر دیے گئے جنوری 1968 کو گاؤں سے بارات پیدل چل کر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جی ٹی روڈ پر بس پر سوار ہونے کے لیے پہنچے۔ کافی دیر کے بعد ایک بس آئی، وہ بھی نہ رکی تو اگلے بس اسٹاپ مانا موڑ تک 3-4 کلومیٹر پھر پیدل چلے اور وہاں سے بس نہ ملی اور تانگوں کے ذریعے بورے والا بس اڈہ پر پہنچے۔ وہاں سے انفرادی طور پر بذریعہ بس چچا وطنی اور میاں چنو پہنچے۔ 9 بجے رات گاؤں میں چاند کی 14ویں رات جو دن کی طرح تھی کو بارات کا استقبال ہوا۔ بارات کو 2 دنوں تک ٹھہرایا گیا، ایک رات سسرال والوں نے اور دوسری رات ان کے حقیقی رشتہ دار نے ٹھہرایا۔ اس وقت ایسا ہی رواج تھا برادری میں، یہ میری شادی مثالی رہی۔ تیسرے روز اپنے گاؤں دلہن کو بس اسٹاپ سے بیل گاڑی کے ذریعے گھر لے کر آئے۔ گاؤں کی عورتوں نے حسب روایت دلہن کی بہت تعریف کی، لیکن میں سوچو بچار میں گم رہا۔ دلہن ہمارے گھر ایک رات ٹھہری، لیکن دلہن کے کمرے میں جانا تو درکنار، ادھر جھانکا تک نہیں۔ میں نے دلہن کا چہرہ واپسی اس کے میکے جا کر دیکھا، بس پھر کیا تھا، میں کانپ گیا اور لرزہ تاری ہو گیا، کیونکہ میرے دل کو سب کچھ اچھا نہ لگا اور میں کنفیوژن کا شکار ہو گیا۔ پریشانی کے عالم میں چادر لے کر لیٹ گیا۔ جب دلہن کی سہیلیاں دلہا کو دیکھنے آئیں تو میرے موڈ کو دیکھ کر کہ شاید طبیعت ناساز ہے، گھر والوں نے لڑکیوں کو مذاق کرنے سے منع کر دیا کہ دلہا مذاق کو پسند نہیں کرتا۔ خیر رخصتی ہوئی، ہم مکلاوا لے کر گھر واپس آ گئے۔ بیوی کی سیرت، خدمت گزار اور ملنسار پایا، زندگی اس ادب پیما کے ساتھ شروع ہو گئی کہ اچھے اور برے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنا ہے۔ دوسرے
روز بہت ہی اچھی کہانی، عارف صاحب کمال کی کہانی آپ نے سنائی، اور پتہ یہ لگا کہ ہم خامخواہ کہتے ہیں کہ ظالم سماج نہیں ہوتا، ظالم سماج یہ دونوں کہانیوں میں، آپ کے یہاں بھی ظالم سماج تھا اور پچھلی کہانی میں بھی ظالم سماج نے بڑا برا کردار ادا کیا، تو اب بہت خوش ہیں آپ اپنی زندگی سے؟
جی ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے،
اچھا
میں خوش ہوں اور ہمارا اتفاق بھی کافی ہے، اور بڑھاپے میں تو پھر ایک دوسرے کے بغیر جو ہے گزارا مشکل ہے۔
اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ زندگی گزارنے میں سیرت کا بڑا دخل ہوتا ہے، تو
ہاں بالکل بالکل۔
تو کتنے بچے، کتنے آپ کے
بچے؟ 3 بچے اور 3 بیٹیاں ہیں۔
تو آپ کی بیگم کو پتا لگا کہ کبھی ناراض ہوئی کہ آپ نے کیا حرکت کی تھی جب شادی ہوئی تھی؟ اس وقت جھانکا تک نہیں آپ نے دیکھنے کی صورت دیکھنے کی کوشش؟
نہیں، وہ بالکل سادہ تھی اور ان کو یہ نہیں معلوم۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ میری جو سسٹر ان لا تھی، اس نے کہا تھا کہ اقبال اندر آ جاؤ
جی،
تو اندر بیٹھے تھے نا دلہن، تو میں نے کہا نہیں میں اندر نہیں آؤں گا، کیونکہ اس وقت اس طرح کا جو تھا وہ تقاضا نہیں ہوتا تھا، لہذا میں اندر نہیں گیا۔
لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ نے پھر
ہوتا تھا اس لیے
جی۔ اچھا یہ مجھے بتائیے اقبال صاحب، آپ کرتے کیا ہیں؟
میں اس وقت ریٹائر ٹیچر ہوں۔
اچھا،
اور بچے دکان پہ کام کرتے ہیں، شوز کی دکان ہے، تو میں چکر لگا لیتا ہوں، ویسے ریسٹ پہ رہتا ہوں۔
چلیے مبارکباد دیتے ہیں آپ کو، اچھی سی اتنی خوشگوار طریقے سے کہانی سنانے کا اور اتنی اچھی ریکارڈنگ کر کے بھیجنے کا، اور آپ کو خدا حافظ بھی کہتی ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور انتظار رہے گا آپ اور لوگوں کی بھی کہانیاں ہمیں لکھ کے بلکہ ریکارڈ کر کے بھیجیے۔ تو سامعین یہ تھیں آج کی کہانیاں، اور ایک خوشگوار انجام کے ساتھ ایک کہانی کے ہم خدا حافظ آپ کو کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پروڈیوسر انجم حریر گل، سعدیہ اسد اور اسفر امام تھے، رابرٹ مکلین ہمارے انجینئر تھے، اور درخواست وہی کہ کہانیاں بھیجتے رہیے، انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔ اجازت دیجیے شناز عزیز کو، خدا حافظ۔ ہاں، اور ہاں ایک نام تو بتانا بھول ہی گئے کہ کیٹ ہومز ہمارے دوسرے انجینئر جو تھے، کیٹ ہومز تھے، تو ان سب کا شکریہ اور میری طرف سے خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔